গোষ্ঠ জয় বৈশ্বাদ পরমেশ পরিব্রাজ কাচার্যষ্টোত্তর সব শ্রী সীম ছিল অভয় চরণ ভক্তি বিদান স্বামী ছিল প্রভুপাদ কি গ্রন্থদাস শ্রীমদ ভাগবত কি নিত্য লীলা বৈষ্ঠ জয় বিষ্ণুপাদ পরমংশ পরিব্রাজ কাচার্য অষ্টোত্তর সব শ্রী শ্রীমদ শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আবির্ভাব তিথি উৎসব কি শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ কি শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আবির্ভাব তিথি উৎসব কি জয় নিধাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল হরে কৃষ্ণ ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নারায়ণ নমস্কৃতম নরম চৈব নরোত্তমম দেবীম সরস্বতীম ব্যাসম ততো জয়ামহীরহে নষ্টপ্রায়েষু ভদ্রেষু নিত্যম ভাগবত সেবায় ভগবতি উত্তম শ্লোকে ভক্তির্ভক্তি গ্রন্থরাজ শ্রীমদ ভাগবতম দশম স্কন্ধ অষ্টাদশ অধ্যায় শ্লোক সংখ্যা ১৯ ১৮-১৯ গোপাল কৃষ্ণ প্রাহ বিহার হে গোপা বিহারিষ্যাম দন্দীভূয় যথাযথম তত্ত্বপাহুব গোপালাম কৃষ্ণ প্রাহ বিহারবে হে গোপা বিহারিষ্যাম দন্দীভূয় যথাযথম তত্ত্বপাহুব গোপালাম কৃষ্ণ প্রাহ বিহারবে হে গোপা বিহারিষ্যাম দন্দীভূয় যথাযথম তত্ত্বপাহুব গোপালাম কৃষ্ণ প্রাহ বিহারবে হে গোপা বিহারিষ্যাম দন্দীভূয় যথাযথম
তত্র
शब्दार्थ तत्र तत्पश्चात उपाहूय बुलाकर गोपालान ग्वाल बालों को कृष्णा कृष्ण ने प्राह कहा विहारवीत समस्त क्रिय के जाता हे गोपा हे ग्वाल वाले व्योदिश्यामा चलो खेलने दंदी हुया दो टोलियों में बैठकर यथाजथम उचित रीति से अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तब समस्त क्रिया के जाता कृष्ण ने सारे ग्वाल वालों के बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा हे ग्वाल वाले आप चलो खेलने हम आपने आपको दो समान टोलियों में बैठ लेंगे दो समान टोलियों में बैठ लेंगे। तात्पर्य यथायतम शब्द का अर्थ ये है कि कृष्णा निस्संदेह चाहते थे कि दोनों टोलियाँ एक समान हो जिससे अच्छा खेल हो सके। खेल का आनंद लूटने के साथ ही इस खेल का उद्देश्य प्रलम्बासुर को मारना था। ओम अज्ञान निरंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति सर्वदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं विष्णवांश्च श्रीरूपं शरणदातं शरणरघुनाथं तं सुधीरम् शाद्वैतं शावदूतं परिजनाशयितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणलिता श्रीविशाखान्वितश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नमामि। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चत्वेषधारिणे नम महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गुरुदिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विशोभानुसुते नमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि शिवभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मूकं गरुदिवाचलं पुंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद महाभव। हरे कृष्ण। यह अध्याय का शीर्षक है भगवान बलराम द्वारा कुलम्बासुर का वध। इस श्लोक का तात्पर्य में वर्णन किए कि यथायथम शब्द को, क्योंकि कृष्णा सर्वदर्शन अर्थात सर्वदर्शी, आओ इस सर्वदर्शी होने का नाते कृष्णा अविषयम अर्थात अपराजेय। श्रील प्रभुपाद लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ग्रंथ में इसका वर्णन की कि ये जो अध्याय है प्रलम्बासुरवध, ये अध्याय में प्रलम्बासुर वर्सेस कृष्ण का लड़ाई। प्रलम्बासुर को पता था कि कृष्ण अपराजेय तथा सर्वदर्शना अर्थात जो कि सर्वदर्शी, और प्रलम्बासुर उसमें वर्णन किए है आगे चलते हम लोग श्लोक में पढ़ेंगे कि दानव पुंगव अर्थात दानव श्रेष्ठ। तो एक दानव श्रेष्ठ होने का नाते उनका पता है कि कृष्ण सर्वदर्शन अर्थात कृष्ण को सब कुछ जानकारी है, ये सर्वज्ञ है। कृष्ण के साथ लड़ाई करना मेरे लिए मुश्किल है, फिर भी उन्होंने एक गोप बालक का रूप लेकर इस लड़ाई का मैदान में शामिल हो। ये लड़ाई का मैदान में शामिल होकर, क्योंकि प्रलम्बासुर कल्पमलोचन को भी बता रहे थे कि एक अनर्थ का प्रतीक, ही इज ए सिंबल ऑफ द अनर्थ। तो ये अनर्थ श्री भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करें कि चार प्रकार का अनर्थ का वर्णन किया है शास्त्र में। अरे प्रलम्बासुर एक अनर्थ का प्रतीक है जो कि शास्त्र में वर्णन किए है कि प्रलम्बासुर ही इज ए सिंबल। एक है चार प्रकार का जो अनर्थ का वर्णन है प्रलम्बासुर के ऊपर, वो है स्त्री लाम्पट्य। लाम्पट्य का अर्थ होता है जिनका घर में अपना धर्म पत्नी को छोड़कर दूसरा कोई नारी के ऊपर जिसका आसक्ति है, दूसरा कोई स्त्री का ऊपर जिसका आसक्ति रहते हैं, उसको कहते हैं कि स्त्री लाम्पट्य। स्वाभाविक रूप से किसी का प्रश्न आ सकते हैं कि प्रलम्बासुर को ऐसा क्यों चुने गए। ये जो चार प्रकार का अनर्थ का वर्णन किए है प्रलम्बासुर के ऊपर, पहला है कि स्त्री लाम्पट्य, दूसरा वर्णन किया कि लाभ, तीसरा है पूजा प्रतिष्ठा, चौथा है दूरीकरण, मतलब किस तरीका से इस चरित्र से आपने को सुधारना है। तो प्रलम्बासुर इस अनर्थ का, स्त्री लाम्पट्य अनर्थ का प्रतीक। स्वाभाविक रूप से असुर कुल को कभी भी अपना ऊपर विश्वास नहीं रहता है, अपना परिवार के ऊपर भी विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी प्रलम्बासुर को पता है कि कृष्ण स्वयं अपराजेय अर्थात जो कि सर्वदर्शी सब कुछ जानकारी है, फिर भी प्रलम्बासुर आए लड़ाई का मैदान में कृष्ण के साथ लड़ने के लिए। तब उन्होंने सोच ली, उन्होंने भी एक योजना बनाई। गोपाल जी लीला पुरुषोत्तम ग्रंथ में इसका वर्णन की कि प्रलम्बासुर जिस तरीके से योजना बनाए उसी तरीके से कृष्ण भी योजना बना ली, कि कृष्ण योजना बने कि इसी तरीके से खेल खेलना है, क्योंकि प्रलम्बासुर आए एक गोपो बालक रूप लेकर, लेकिन सर्वज्ञ होने का नाते कृष्ण को पता है कि ये प्रलम्बासुर आए भले भी असुर, लेकिन उन्होंने आ गए एक गोपो बालक रूप लेकर। जब उन्होंने गोपो बालक रूप लेकर आए तो मेरा उचित कर्तव्य उनको अच्छे तरीके से संबोधित करना। जैसे कि जब पुतना आई थी तब पुतना भगवान को पता था कि पुतना किस तरीके से आए, किस कारण के लिए पुतना आए, फिर भी पुतना को भगवान ने माता रूप से स्वीकार की। क्यों ना पुतना आकर दूध पिलाए, दुग्ध स्तनो उबालय कतम, मतलब दुग्ध देने के लिए दूध पिलाने के लिए स्वयं पुतना आए, इसके लिए भगवान उसको अभिवादन भी किए। जय श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो जब पुतना आए इसी तरीके से कृष्ण को पता था ये दूध का रूप लेकर कृष्ण जहर पिलाने के लिए आए, फिर भी जब दूध पिलाने के लिए ये भावना में कृष्णा पुतना को रक्षा की, मतलब उन्होंने अभिवादन किया कृष्ण को। भले भी जब कृष्ण पुतना आई उनको दूध पिलाए, तो जब वो आ गए तब कृष्ण ने पूरा दूध को पी ली और तब अपना रूप को दिखाया कि अभी मेरे को अब छोड़ दो। तब कृष्ण बताया कि मैंने एक बार जिसको पकड़ लेता हूँ कभी भी उसको मैं छोड़ता नहीं। तो कृष्ण भावना इसी तरीके से है। भले भी ये कृष्ण भावना को ग्रहण करने में बड़ा तकलीफ होता है सबको। श्री गोपाल जी बताए कि मैंने जब पहले अमेरिका में गए थे ये सब हिप्पी लोग आए मेरे सामने। ये हिप्पी का स्वभाव होती है कि सुबह से रात तक दारू पीना, गांजा खाना, सिगरेट पीना, ये सब उनकी एक्टिविटी है, हिप्पी का एक्टिविटी। एक समय अमेरिका में ऐसा था कि पूरा अमेरिका समाज बिकम ए पोल्यूटेड बाय द हिप्पीज, मतलब अमेरिका का समाज जो है वो पूरा दूषित हो गए थे कि हिप्पियों के कार्यक्रम के द्वारा। तो इसी प्रकार हिप्पी को श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में लेकर आए। तो ये जो पोलंबा सुर का जो अनर्थ प्रतीक, ये अनर्थ का अर्थ था है अप्रयोजनीय अभ्यास, अननेसेसरीली हैबिट्स। श्रील प्रभुपाद जी वर्णन किए कि अनर्थ मतलब अप्रयोजनीय अभ्यास। जैसे कि कोई व्यक्ति धूमपान कर रहे हैं, कोई व्यक्ति सिगरेट पीते हैं, कोई व्यक्ति दारू पीते हैं। जो सिगरेट पीते हैं उनको पता है कि सिगरेट जब वो खरीद करके लेकर आते हैं पैकेट का ऊपर लिखा रहता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हाना है। फिर भी वो देखने के बाद भी वो सिगरेट पी लेते हैं। तो इसको कहते कि अनर्थ अर्थात अप्रयोजनीय अभ्यास। इस अप्रयोजनीय अभ्यास किस तरीके से अपना जीवन में प्रकटित हो जाते हैं, श्री गोपाल वर्णन कर रहे हैं कि ये अप्रयोजनीय अभ्यास व अनर्थ अपना जीवन में प्रकटित होता है असत्संग के कारण। असत्संग कारणा मतलब ये असत्संग का कारण के मौजूद ये प्रकार, इस प्रकार का अनर्थ अपना जीवन में जागृत हो जाते हैं। तो कोई व्यक्ति जब दारू पीते हैं उनको पता है कि दारू पीने में हमारा शरीर में कितना खतरनाक हो सकता है, फिर भी ऐसा कोई संग उनको मिल जाते हैं जिसके कारण वो संग प्राप्त होने से वो दारू पीना चालू कर देते हैं, सिगरेट भी पी लेते हैं। तो इसको कहते हैं कि अनर्थ। तो इस अनर्थ को कैसे निभाना है, श्री गोपाल जी वर्णन करें कि अनर्थ को निभाने का जो प्रथा है वो है आदो शुद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया तत अनर्थ निर्वृत्ति। आदो शुद्धा, जैसे कि अमेरिका में जब श्री गोपाल जी पहले गए तो इतने प्रकार का हिप्पियों को उन्होंने मिले। हिप्पी से भी एक प्रकार का नहीं है, श्री गोपाल जी वर्णन की कि मैंने बहुत प्रकार का हिप्पी मैंने देखा हूं। जैसे कि कोई कोई हिप्पी मेरे पास आ जाते हैं, जब मैंने पहले अमेरिका में गए मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो कोई व्यक्ति आए ऐसे कोई हिप्पी को आकर मिले जो मेरे को सिगरेट पीते पीते मेरे सामने आ गए। तो बहुत ही सुंदर श्री गोपाल लीलामृत में भी इसका वर्णन है और प्रभुपाद डायरी में भी प्रभुपाद ने लिखे है इसके तरीके से कि श्री गोपाल जी जब पहली बार गए अमेरिका में तो ऐसा कोई कोई हिप्पी आए जो कि सिगरेट पीते पीते श्री गोपाल जी का आकर मिले और सिगरेट पीने का समय मुख से धुआं निकालते थे और उसी धुआं कभी भी श्री गोपाल जी के शरीर में भी पहुंच जाते थे। लेकिन श्री गोपाल कभी भी इसी प्रकार हिप्पी को अशुद्ध नहीं किया, ही नेवर नेगलेक्ट देम, कभी भी उन्होंने अस्वीकार नहीं किए थे। कोई भी अगर धुआं भी छोड़ दिए कोई हिप्पी आकर तो श्री गोपाल जी उनको पीठ चपड़ा दिए, बोलते आओ सामने आ जाओ, प्लीज कम डियर माय सन एंड गाइड्स। तो सब लोग सामने आए। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी का व्यवहार को देखकर प्रभुपाद जी के ऊपर वो लोग को श्रद्धा है, जिसको कहते हैं कि आदो श्रद्धा। अगर किसी व्यक्ति का ऊपर अगर आपका रिस्पेक्ट नहीं है तो जो भी कुछ बोले आप सुनने के लिए तैयार रहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक ऐसा महान चरित्र है जिसका मुखारविंद से, जिनका व्यवहार से इसी प्रकार हिप्पी लोग भी श्रील प्रभुपाद जी के चरण में आपने को झुक दिए, जिसको कहते कि आदौ श्रद्धा। और जब श्रद्धा जागृत होता है हृदय में, पहले कुछ नहीं बताया श्रील प्रभुपाद जी आपने जप करो, ये करो, ये सब छोड़ दो, कुछ भी नहीं बताया। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने व्यवहार के द्वारा, व्यवहार के हिसाब से इसी प्रकार हिप्पी को अपना ग्रुप में बना लिए। जब उनका मन में श्रद्धा आए तब वो समझ गए कि इसी प्रकार साधु को मेरे को संग करना। और जब इसी प्रकार साधु के संग करने से मौजूद उनका मन में भजन क्रिया का लालसा आ गया, और जब भजन क्रिया का लालसा आ जाती है किसी को, तब उनको जो अप्रयोजनीय अभ्यास, जिसको कहते हैं अनर्थ, तब वो अनर्थ निर्वृत्ति होता है। इसके लिए कहते हैं कि आदौ श्रद्धा ततो साधु संग, भजन क्रिया ततो अनर्थ निर्वृत्ति। तो इसी तरीका से अनर्थ निर्मित होता है। तो प्रलंब शुद्ध भी एक प्रकार अनर्थ का प्रतीक। तो प्रलंब शुद्ध का मन में पता था कि ये कृष्ण जो है ये अपराजेय, इसको साथ मैं कभी लड़ाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने आए गोप बालक का रूप लेकर, भगवान सर्व किए उनको भी सब कुछ पता है, तो उनको पता है कि ये जो प्रलंब शुद्ध गोप बालक का रूप लेकर आए, इनको आए किस उद्देश्य के लिए, कि हमारा के निधन करने के लिए आए। तब भगवान ने एक योजना बनाई कि चलो मैंने अभी दो पार्टी बना देता हूँ, एक मेरा पार्टी और एक बलराम जी का पार्टी। तो दोनों पार्टी बनाकर हम लोग खेल खेलेंगे। इसमें एक खेल के बाद एक ही उद्देश्य है, वो कहे कि जो पराजित होगा जो और जो विजित होगा, एक दोनों को पकड़ कर लेकर जाएंगे, कांध में बैठा कर लेकर जाएंगे। कि कृष्ण को पता था कि ये जो आए, हमारे लक्ष्य है भाले भी खेलना, लेकिन इसको भी अच्छे तरीके से शिक्षा देना। प्रलंब से थोड़ा समय के लिए आकर इसी तरीके से स्वयं को प्राप्त की थी। तो ये अनर्थ निर्वृत्ति का एक ही प्रथा है तथा साधु संग। ये साधु संगों के द्वारा ही ये अप्रयोजनीय अभ्यास को हम लोग निभा सकते। तो प्रलंबासुर जो अनर्थ का प्रतीक, जिस प्रतीक लेकर उन्होंने आए, थोड़ा समय के लिए उन्होंने कृष्ण बलराम तथा गोप बालक का संग मिले थे, जिसके द्वारा उन्होंने सोच लिया कि हमारा जीवन को अगर सही तरीके से बिताना है तो इसी तरीके से मेरे को साधु संग को करना है। जिस भावना लेकर प्रलंबासुर आए थे, और कृष्ण भी ये सोच लिए कि प्रलंबासुर आए हम लोग को निधन करने के लिए, भाले भी हम लोग खेल खेल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य होता है कि प्रलंबासुर को निधन करना। तो अनर्थ निर्वृत्ति का कमलोचन को बता रहे थे कि चार प्रकार जो अनर्थ है, इसको अगर निर्वृत्ति करना है तो इसी तरीके से साधु संघ के द्वारा ही हम लोग इसको निर्वृत्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव तिथि, तो हमारे मंदिर में एक नियम बनाए कि कोई भी गौरी पार्षद का आविर्भाव तथा तिरुभाव तिथि में उनको पर चर्चा तो होना चाहिए। और आज का एक विशेष दिन है जो कि हमारा गौरी आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये माघी पंचमी तिथि में इसी धराधाम में आपने को प्रकटित की थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब उनके पिताजी श्री भक्तिविनोद ठाकुर पुरी जिला में, जगन्नाथपुरी सबको पता है, पुरी में नारायण छाता बोल के एक गाँव है जहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर उसी समय एक छोटा कुटिया में रहते थे, माता भगवती प्रसाद। और ये छोटा कुटिया में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ था। जन्म होने के बाद जैसे बच्चे को अन्नप्राशन नामकरण वगैरह होते हैं, इसी तरीका से पूरी में विमला प्रसाद ठाकुर जी जिनका महाप्रसाद को खिलाए भक्तिविनोद ठाकुर, तो भक्तिचंद्र सरस्वती का नाम रख दिए विमला प्रसाद। तो ये विमला प्रसाद बचपन से श्री प्रभुपाद जी बताएं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का चरित्र ऐसा है कि उनका चरित्र को विश्लेषण करने का ताकत आज का दिन में किसी का नहीं है। जिन्होंने कोई जागतिक वस्तु के ऊपर जिंदगी में कभी भी उनका आसक्ति नहीं हुई, जिन्होंने 7 साल उम्र में जब भक्तिविनोद ठाकुर कलकत्ता में आए तो एक जगह में एक जगह देखा उन्होंने, तो उसी जगह में एक मकान बनाने के लिए भक्तिविनोद ठाकुर ने आए, तो जब मकान बनाने के लिए माटी गुदना चालू की तो उसी जगह में एक विग्रह मिला था जिस विग्रह का नाम है कूर्मदेव। ता ये कूर्मदेव विग्रह जब मिले भक्तिविनोद ठाकुर वही कूर्मदेव विग्रह को भक्तिचंद्र सरस्वती ठाकुर के हाथ में अर्पित कर दी थी। वही 7 साल उम्र से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भगवान कूर्मदेव का सेवा पूजा करना चालू किया। बाद में भक्तिविनोद ठाकुर जब हुगली जिला का डिप्टी मजिस्ट्रेट बन गए थे, जिन्होंने मायापुर धाम परिक्रमा के उनको जरूर पता होगा कि हुगली बोल के जिला जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत सारे अंतरंग पार्षद का लीलास्थली भी है एवं साथ साथ श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत सारे लीलास्थली का जगह है ये हुगली जिला। इस हुगली जिला में तत्कालीन समय में भक्तिविनोद ठाकुर डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और डिप्टी मजिस्ट्रेट होने का कारण पूरा परिवार को लेकर भक्तिविनोद ठाकुर श्रीरामपुर में एक छोटा कुटिया ली थी और उसी कुटिया में भक्तिशाली सरस्वती ठाकुर को रखे और उनको देखभाल करना चालू किए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को श्री भक्तिविनोद ठाकुर श्रीरामपुर स्कूल जो आज का दिन में भी वर्तमान है, श्री प्रभुपाद जो पहली बार विदेश से भक्तों को लेकर आए थे 1966 में, तब ये श्रीरामपुर स्कूल दर्शन करने के लिए सब भक्तों को लेकर गए। क्यों? नहीं, श्रीरामपुर स्कूल में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पहला शिक्षा चालू हुई थी। इसके जो शिक्षा का लीला स्थली मानी शिक्षा का जो लीला ये बहुत ही सुंदर सरस्वती जयश्री बोल के एक ग्रंथ है जिसमें इसका वर्णन भी किया है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पकड़ के भक्तिविनोद ठाकुर इसी स्कूल में लेकर गए। स्कूल में लेकर जाने के बाद पहला दिन जब उन्होंने स्कूल में गए, एकदम बचपना में लेकर गए स्कूल में, तो आज जैसा होता है ना कि 2 साल 2.5 साल में बच्चा को प्ले ग्रुप में डालना पड़ता है, क्योंकि प्ले ग्रुप में डालने का यही अर्थ होता है कि बच्चा किस तरीके से स्कूल में आना जाना का आदत सीखते हैं, हैबिट जिसको बोलते हैं। उसी समय प्ले ग्रुप बोल के कुछ भी नहीं था। आज का दिन में तो स्कूल इतना कमर्शियल हो गए, इतना प्रोफेशनल हो गए कि प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1, सीनियर, उसके बाद स्टैंडर्ड 1, ये होने का कारण कि स्कूल सब प्रोफेशनल हो गए, जिसके लिए आजकल माँ बाप किसी का समय नहीं है ज़्यादा। माँ बाप नौकरी में भाग जाते हैं, सुबह से बच्चा को देखभाल करने के लिए कोई है ही नहीं, इसके लिए बच्चा को प्ले ग्रुप में डालना पड़ता है। और ये प्ले ग्रुप में डालने से बच्चे का आदत हो जाती है स्कूल में कैसे जाना है, कैसे आना है, क्या करना है। लेकिन उसी समय ऐसा कोई विधि नहीं था कि बच्चे को प्ले ग्रुप में डालना है। भक्तिविनोद ठाकुर सीधा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को क्लास 1 मतलब स्टैंडर्ड 1 में एडमिशन करा के आए, जब भक्तिविनोद ठाकुर का उम्र थे सिर्फ 4 साल। तो जब पहला दिन उन्होंने गए श्रीरामपुर स्कूल में, बहुत ही सुंदर लीला का वर्णन किया है शास्त्र में कि पहला दिन जब उन्होंने गए तो एक मास्टर के साथ भक्तिचंद सरस्वती ठाकुर मिले, जिस मास्टर का नाम है मनमोहन भट्टाचार्य। और ये को देख लेता हूँ, तो मनमोहन भट्टाचार्य, तो उनको जब उन्होंने मिले तो भक्तिविनोद ठाकुर अपना बेटा को बताया कि देखो ये तुम्हारे टीचर, आप इनको अच्छे तरीके से प्रणाम करो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वही टीचर को चरण छूकर उन्होंने प्रणाम की थी मनमोहन भट्टाचार्य को। तो मनमोहन भट्टाचार्य जब पहला दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देख लिए श्रीरामपुर कॉलेज में, श्रीरामपुर स्कूल में, तब उन्होंने आश्चर्यचकित हो गए कि ये बच्चा का पूरा शरीर से ऐसा कोई ज्योति निकल रहा है जो आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा। ये जयश्री ग्रंथ में इसका वर्णन किया है कि ये बच्चा को देखकर और टीचर ने सोचने लगे कि मैंने अपना जिंदगी में इतने सारे छात्रों को मैंने पढ़ाया हूं आज तक, लेकिन ऐसा कोई स्टूडेंट आज तक मेरे जीवन में आए नहीं। तो भक्ति विनोद ठाकुर, क्योंकि उसी समय भक्ति विनोद ठाकुर डेप्यूटी मजिस्ट्रेट ऑफ द हुगली डिस्ट्रिक्ट, मतलब हुगली जिला का डेप्यूटी मजिस्ट्रेट है, इतने बड़ा पोस्ट। ये पोस्ट के कारण सब टीचर लोग आ गए भक्ति विनोद ठाकुर को मिलने के लिए कि इतने बड़े आदमी हमारा स्कूल में आए आज, और कई बेटा को लेकर आए स्कूल में पढ़ाई कराने के लिए, एडमिशन कराने के लिए लेकर आए। सब टीचर लोग आ गए सामने, तो मनमोहन भट्टाचार्य भी आए साथ में। तो उसमें वर्णन किया है कि जब मनमोहन भट्टाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पढ़ाना चालू किए थे, बच्चा को जिस जिस के पढ़ाते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ए बी सी डी औ आ क ख ये सब पढ़ना चालू की, तब देखा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार अगर टीचर ने कोई शब्द को बोले तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तुरंत उसी शब्द को पकड़ लेते थे। सरस्वती जयश्री ग्रंथ में इसका वर्णन किए कि टीचर ने पहला दिन पढ़ाया कि बेटा बोलो अ आ क ख, तो अवा जो होता है जो 11 शब्द होता है, और क ख ग घ मा ये भी 26 शब्द होता है। तो पहला दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये सब शब्द को पकड़ ली थी। दूसरा दिन उन्होंने मात्रा सिखाया कि कैसे लिखना है, क के बाद आकार युक्त होकर का होते हैं, तो इसी तरीके से मात्रा सिखाया उन्होंने। जब मात्रा सिखाए तब वो भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दूसरा दिन वो भी पकड़ लिए। तो सब टीचर एकदम आश्चर्य देखे कि ऐसा स्टूडेंट हमारा स्कूल में तो आज तक कभी भी मिले ही नहीं, और ऐसा स्टूडेंट आया कि जिसको जब स्कूल में पहुंच जाते उसको एकदम इतना जति निकालता है स्कूल में। तो सब टीचर लोग प्रभावित हो गए देखकर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब 5वां क्लास में अध्ययन कर रहे थे, और ये 5वां क्लास में अध्ययन करने का समय एक नया लिखने का पद्धति टीचर ने सिखाया, एक नया ग्रंथ लेकर आए जिसका नाम है बाई कैंटो। इस बाई कैंटो के ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब गौड़ीय मठ स्थापना की थी, उसके बाद गौड़ीय मठ से एक पेपर निकलते थे, जैसा इस्कॉन से निकलता है ना भगवत दर्शन पत्रिका, हरे कृष्ण संगीत समाचार, न्यूज लेटर, तो इसी तरीका से गौड़ीय मिशन से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक पेपर निकले, स्पिरिचुअल पेपर, जिसका नाम है सज्जन तुषणी। इस सज्जन तुषणी पत्रिका में यही बाई कैंटो किस तरीका से है, 5 क्लास उम्र में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये बाई कैंटो पद्धति सीख ली, और जब 5 क्लास उम्र में थे तब उन्होंने ज्योतिष शास्त्र अध्ययन करना चालू की थी, एस्ट्रोलॉजी। जब एस्ट्रोलॉजी चालू हो गए, एस्ट्रोलॉजी जब पूरा उन्होंने सीख गए, ज्योतिष शास्त्र गणना किस तरीके से करना है, इसको उन्होंने किस तरीके से उपयोग की, जब उनका उम्र हो गए थे, जब उनका मन में विचार आए कि अभी मेरे को गुरु का चरणस्थित होना है। वाले भी पहले शुरू बात में 7 साल उम्र में भक्त विनोद ठाकुर उनको मंत्र दीक्षा दिलाए थे, लेकिन जब उनका उम्र हो गए 17 साल, 17 उसी समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर को बताए कि अभी मेरा समय हो गए, मेरे को गुरु चरण आश्रय करना है एट द एज ऑफ 17। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनको लेकर गए गौड़ किशोर दास बाबा जी महाराज के पास। जब गौड़ किशोर दास बाबा जी महाराज के पास लेकर गए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को देखकर गौड़ किशोर दास बाबा साक्षात वैराग्य मूर्ति, किसी को कभी भी दीक्षा वगैरह नहीं देते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत उनको सेवा की। तो एक दिन जब बताए कि मेरे को दीक्षा लेने आपका चरणाश्रित होना है, तो गौड़ किशोर दास बाबा जी महाराज ने बताया कि मैं पहला दिन महाप्रभु को पूछ के आता हूं, मैं पहला दिन पूछ के आपको आके बताऊंगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसको सहन कर ली। दूसरा दिन फिर आए, आके पूछा बाबा जी आपने पूछ के आए, बोलते मैं आज भूल गया हूँ, आप कल आओ। फिर तीसरा दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, तो आने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूछने लगे बाबा जी आज आपने पूछ के आए महाप्रभु को, बोलते हैं मैंने महाप्रभु को पूछा। तो क्या बताए महाप्रभु? महाप्रभु ने बताया कि आपका जो पंडित्व है, जो पंडित हो, आप इतने पढ़ाई किए हो, ये इसका सामने, भक्ति का सामने कुछ भी नहीं है, ये पहले आपको स्वीकार करना है। जब तक आप ये स्वीकार नहीं करोगे तब तक मैंने आपको आश्रित नहीं कर सकता। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दुखी होकर बाबा जी महाराज को पूछने लगे कि बाबा जी आपने मेरे को इतना परीक्षा ले रहे हो, फिर भी उनका निष्ठा को देखकर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का निष्ठा को देखकर गौड़ किशोर दास बाबा जी महाराज उनको हरि नाम चरणाश्रित किए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना जीवन चरित्र में बताए, जब श्रीरामपुर कॉलेज में पढ़ाई कर, श्रीरामपुर स्कूल में जब पढ़ाई कर रहे थे, 10 क्लास जब पढ़ाई हो गए उनका, 10 क्लास कहते हैं ना कि 10 क्लास में ऐसे सिपास हो जाते हैं, तो 10 क्लास जब पढ़ाई हो गए, बंगाल में उसी समय ये विधि था, 10 क्लास को बोलते थे कि मैट्रिक पास, तो ये मैट्रिक पास हो गए, ही इज ए मैट्रिकुलेशन। उसी समय प्रभुपाद जी उसमें बताया कि कि मैट्रिकुलेशन जब पास हो गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर भगवती देवी दोनों बड़ा खुश हो गए उनके ऊपर, हमारा बच्चा इतना कम उम्र में इतने अच्छा रिजल्ट किए, देखो परीक्षा में कितना अच्छा रिजल्ट किए उन्होंने, एग्जाम दिए, तो चलो ये बच्चे को हम लोग अभी कॉलेज में डाल देते हैं। उसी समय ऐसा बंगाल में एडुकेशन सिस्टम, शिक्षा पद्धति इसी तरीके से था कि 10 क्लास पास होने के बाद, आजकल जैसे हो गए ना कि 11 क्लास 12 क्लास, उसी समय ऐसा नहीं था, 10 क्लास में जब मैट्रिकुलेशन पास हो गए, मैट्रिकुलेशन पास होने के बाद ही बच्चा को तुरंत कॉलेज में डालना पड़ता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपना बेटा को लेकर, एक कॉलेज है कलकत्ता में आज भी वो बहुत ही फेमस, जिसका नाम है संस्कृत कॉलेज, जैसे कि प्रभुपाद जी पढ़ते थे स्कॉटिश चर्च कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज से थोड़ा आगे जाना है, जाकर ये स्कॉटिश चर्च, ये भी एक योजना है प्रभुपाद जी, प्रभुपाद डायरी में वर्णन किए कि मैंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ता था, और हमारा साथ बहुत सारे पॉलिटिशियन लोग भी पढ़ते थे इस कॉलेज में, लेकिन हमारा गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारा कॉलेज से थोड़ा आगे संस्कृत कॉलेज है, जिसमें विशेष रूप से बच्चा को संस्कृत पढ़ना कंपलसरी था। तो इस भावना में भक्ति विनोद ठाकुर अपना पुत्र को संस्कृत कॉलेज में एडमिशन कराए कि हमारा बच्चा शुरू से एक आध्यात्मिक परिवेश में अपना जीवन को बिताए। इस भावना को लेकर भक्तिविनोद ठाकुर बच्चा को एडमिशन करा दिए संस्कृत कॉलेज में। जब संस्कृत कॉलेज में एडमिशन कराए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करने का समय संस्कृत कॉलेज में एक टीचर था जिसका नाम है पृथ्वीशर शर्मा। ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ में लिखते हैं सब नाम। रूपा जी बताया कि मेरे को भी पता नहीं कि ये सब नाम ये आचार्य जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं ये कहाँ से सब नाम को मिले। एक टीचर था जो उनका नाम है पृथ्वीशर शर्मा। ये पृथ्वीशर शर्मा ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को वेद को किस तरीके से पढ़ना है, पुराण को किस तरीके से पढ़ना है, ये सब उन्होंने सिखाए। और वेद और पुराण पढ़ने के बाद, और सबको पता होगा कि कॉलेज में एक लाइब्रेरी रहता है जिस लाइब्रेरी में बहुत सारे प्रकार का ग्रंथ रहता है। एक तो अपना क्लास का पढ़ाई का भी ग्रंथ रहते हैं, फिर बाहर का भी ग्रंथ बहुत रहते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर घर से निकल जाते थे कॉलेज जाने के लिए संस्कृत कॉलेज में। अपना माता पिता सोचते थे मेरा बेटा देखो कितने अच्छा है, कितना अध्ययनशाली है कि एक दिन भी कॉलेज को एब्सेंट नहीं किए। आजकल जैसे होता है ना कि बच्चा अगर एक दिन भी स्कूल या कॉलेज में लेट हो गए कि आया नहीं, एब्सेंट हो गए, तो उसको फीस भरना पड़ता है, लेट फाइन। तो उसी समय ये सब जमाना नहीं था। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब तक उन्होंने संस्कृत कॉलेज में थे एक दिन के लिए भी उन्होंने एब्सेंट नहीं हुए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये सरस्वती जय श्री ग्रंथ में वर्णन किए कि मैंने कॉलेज में जाता था पढ़ने के लिए, लेकिन कॉलेज में जाकर मैंने सीधा लाइब्रेरी में पहुंच जाता था, ग्रंथागार। इसी लाइब्रेरी में जाकर मैंने हर समय वेद पुराण अलग अलग तरीके से मैंने अध्ययन करना चालू की। जब वेद अध्ययन करना चालू की, पुराण अध्ययन करना चालू की, तब क्लास का जो पढ़ाई उसका ऊपर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कुछ भी ध्यान नहीं था। इतनी अच्छा लड़का, जब उन्होंने पांच क्लास में मेट्रिकुलेशन में इतना अच्छा रिजल्ट किए, वो बच्चे जब कॉलेज में गए तो कॉलेज का जो पढ़ाई है उसमें उनका कुछ ध्यान नहीं था। आड़ी ध्यान ना होने का कारण कॉलेज में उन्होंने फेल हो गए। जब फेल हो गए तब भक्ति सरस्वती ने सोचा अरे ये मेरा जीवन के लिए बड़ा अच्छा है, मैंने फेल हो गया मतलब ये कॉलेज तो मेरे को छोड़ना है। अभी फेल हो गया मतलब कॉलेज तो रखने वाला है नहीं। संस्कृत कॉलेज इतना कड़क है, वो आज का दिन में भी इतना कड़क है वो कॉलेज कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर फेल हो जाता है क्लास में तुरंत ही बिकम रस्टिकेटेड, मतलब उसको कॉलेज से निकाल देते हैं। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर फेल हो गए थे। जब फेल होने के बाद उन्होंने सोचने लगे कि अरे मेरा जीवन के लिए बड़ा अच्छा हो गया कि मैंने फेल हो गया हूँ, तो चलो अभी मैं कॉलेज से निकल जाता हूँ, और ज़्यादा मैंने पढ़ाई करूँगा ना कॉलेज के ऊपर तो मेरा परिवार जो है, मेरा परिवार मेरे ऊपर प्रेशर डालेंगे जी और पढ़ाई करो और अच्छा नौकरी करो, शादी करो, घर संसार करो, ये सब करो। ये भावना जब उनका सामने आ गए तब उन्होंने सोचा ये फेल जो क्लास में मैंने फेल हो गया हूँ, ये फेल मेरा जीवन के लिए सबसे अच्छा है। तो ये सोचकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कॉलेज छोड़ दिए थे। जब उन्होंने कॉलेज छोड़ा भक्तिविनोद ठाकुर बड़ा नाराज हो गए अपना पुत्र के ऊपर, मैंने इतने अच्छा कॉलेज में मैंने आपको डाला था लेकिन फिर भी आपने कॉलेज में फेल हो गए। लेकिन फिर भी इसको कहते कि साधु संग। भक्तिविनोद ठाकुर सोचने लगे इसका कारण क्या हुआ सकता है कि मेरा पुत्र जब स्कूल में जाते थे तो स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाई करना चालू की, लेकिन कॉलेज में जाकर उसको क्या हो गया, क्यों फेल हो गए। तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए भक्तिविनोद ठाकुर अपना पुत्र के ऊपर। क्यों, इसमें वर्णन भी किए हैं कि भक्तिविनोद ठाकुर अपना ऑफिशियल का मतलब डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे, इतना बड़ा पोस्ट है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे काम है, ये सब देखने के बावजूद अपना पुत्र के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। फिर भी उन्हें सोचने लगे इसके अंदर जरूर कुछ कारण होगा कि मेरा पुत्रों ने कॉलेज में क्यों फेल हो गए। फिर भी उन्होंने अपना पुत्र को कुछ भी नहीं पूछा कि आपको मैंने कॉलेज में डाला था लेकिन फेल क्यों हो गए। एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर ने देख ली कि पुत्र घर में बैठकर वेद अध्ययन कर रहे हैं, पुराण अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारे शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करना चालू किया। ये देखकर भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़ा प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर कहने लगे कि आपने आपका जीवन का जो सही शिक्षा है, जिस शिक्षा के द्वारा आपने अपना जीवन चरित्र को आप गठन कर सकते हो, वही शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, इस जागतिक शिक्षा का कोई जरूरत नहीं है। ये भक्ति विनोद ठाकुर का मुखारविंद से सुनने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बड़ा आनंदित हो गए कि हमारा पिताजी मेरा गुरु का समान है, जिन्होंने मेरे को अपना जीवन का सही शिक्षा को प्राप्त कराया। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लेकर श्री भक्ति विनोद ठाकुर अलग अलग जगह में जाते थे प्रवचन वगैरह करने के लिए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब भक्ति विनोद ठाकुर के साथ जाना चालू की, उसी समय उन्होंने चैतन्य चैतन्य ग्रंथ अध्ययन की थी। आज जीवन में पहली बार एक जगह होता है जिसका नाम है रेमुना। रेमुना का बारे सबको पता होगा कि रेमुना खीर चोरा गोपीनाथ नाम से विख्यात है। इसमें से बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने खीर चोरा गोपीनाथ दर्शन किए। तो भक्त विनोद ठाकुर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लेकर अलग अलग जगह में गौर पार्षद का लीला स्थली को दर्शन कराए। और उसी समय से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत सारे पारमार्थिक ग्रंथ लिखना चालू किए थे। और साथ साथ 1898 में श्री भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लेकर रेमुना दर्शन करने के लिए लेकर आए, खीर चोरा गोपीनाथ जी से बोलते हैं। उस समय गौड़ीय मठ का प्रचार बड़े अच्छे से चल रहा था, पूरा उड़ीसा में, बंगाल में, बांग्लादेश में, आसाम में, हर जगह में। तो 1898 साल में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जीवन का पहली बार उन्होंने चैतन्य चैतन्य का ऊपर प्रवचन किए थे। जीवन में पहली बार उन्होंने चैतन्य चैतन्य का ऊपर प्रवचन कर रहे हैं 1898 साल में। वो भी सिर्फ दो श्लोक का ऊपर उन्होंने प्रवचन किए थे। वो पहला श्लोक है अनर्पित चरिंग चिरात करुणा यावचिन्न कलो, और दूसरा श्लोक है হরি পুরট সুন্দর দ্যুতি কদম বসন্তী পিতা সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরত বসছে নন্দন। এই দু শ্লোক কো লেকর শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর পহলা আপনা জীবন মে পহলা চৈতন্য চৈতন্য কে উপর প্রবচন কি রেমুনা মে। ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এক রেমুনা মে एक वैशासन बनाए भक्त लोगों ने। जब वैशासन बनाए, आज तो फास्टिंग है इसके लिए 9:30 तक लेके जाता हूँ क्लास में, रेमुना में भक्त लोगों ने एक बहुत ही सुंदर वैशासन बनाए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लेकर गए भक्ति विनोद ठाकुर जी आप वैशासन में बैठो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शर्मा रहे थे, मैं कैसे, मेरा कोई योग्यता है नहीं, मैं कैसे बैठ सकता हूँ उसमें। लेकिन अपना पिताजी तथा आध्यात्मिक गुरु, तब तक भक्ति विनोद ठाकुर का भक्ति सिद्धांत सरस्वती दीक्षा नहीं ली थी, इसके बाद दीक्षा के ऊपर अपना मन विचलित हो गया था। कहने लगे कि ये वैशासन में बैठने का योग्यता मेरा नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर बताए अगर आप वैशासन में नहीं बैठोगे, वैशासन मतलब व्यासदेव का प्रतिनिधि रूप से आप बैठ रहे हो। साधु गुरु वैष्णव का अगर कृपा नहीं हो तब आप व्यासाश्रम में बैठ नहीं पाओगे, और साधु गुरु वैष्णव अगर आपको कृपा नहीं करे तो आपका मुखारविंद से हरि कथा निकाल नहीं पाओगे। साक्षात हरित्री न समस्त शास्त्र रुक्तस्तथा भावते। तो भक्तविनोद ठाकुर अपना पुत्र को हाथ पकड़कर व्यासाश्रम में बिठाए। व्यासाश्रम बहुत ही सुंदर इसका वर्णन किए शास्त्र की, अपना पुत्र को लेकर श्री भक्तविनोद ठाकुर व्यासाश्रम में बिठा दिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जीवन का पहला चैतन्य चैतन्य पाठ करना चालू किए। मंगलाचरण हो जाने के बाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दो श्लोकों से पकड़ लिए थे, एक हरि पुरोट सुंदर और दूसरे श्लोक मैंने पहले बताया। तो इसके ऊपर से हरि पुरोट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु व सचिनंद। এই যে স্ফুরতু শব্দ পহলে উসমে কুছ নেই বতাই, হরি পুরত সুন্দর দ্যুতি কদম্ব সন্দীপিত সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বা সচিনন্দ। এই স্ফুরতু শব্দক ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এক ঘন্টা তক বিশ্লেষণ কিয়ে, এক ঘন্টা তক উনি সে স্ফুরতু শব্দ কো লেকর বতায়। पहला दिन का प्रवचन खत्म हो गए, सब लोग एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि इतने कम उम्र का लड़का कैसे कैसे सीख गए इतना। इसको कहते कि साधु गुरु वैष्णव का कृपा। तो पहला दिन स्फुरतु शब्द को विश्लेषण किए थे, उसमें वर्णन किए कि भक्तविनोद ठाकुर अपना पुत्र को लेकर चार दिन रुके थे रेमुना में। दूसरा दिन ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বর্ণন করে কি হরি পুরোট সুন্দর। তো হরি পুরোট সুন্দর উপর বর্ণন কেন চালু কি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আপনার পুত্র কা মুখারবিন্দ সে হরি কথা শুনকর আশ্চর্যিত হো গে আনন্দিত ভি হো গে, ফির ভি আপনার পুত্র কা সামনে পুত্র কা কুছ গুণগান নেই কি থে। जब उन्होंने पुत्र का कुछ गुणगान नहीं की, गंभीर रूप से उन्होंने सुनना चालू की। जब प्रवचन खत्म हो गए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पिताजी को पूछने लगे मैंने क्या क्या गलती बोला। जैसे कि प्रभुपाद जी जब भी कहा प्रवचन होता है तो लास्ट में पूछते हैं डज एनी क्वेश्चंस, किसी का अगर कुछ प्रश्न है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी इसी तरीके से ये नहीं पूछा कि कोई प्रश्न है कि नहीं, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर को जाकर बताया कि मैंने क्या क्या गलती बोला। तो भक्तिविनोद ठाकुर इतना आनंदित हो गए पुत्र को देखकर तो उन्होंने आलिंगन करना चालू की थी। और जब उन्होंने आलिंगन की तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एकदम आनंदित हो गए। इसके बाद ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मन में विचार आए कि मेरे को अभी मेरा पारमार्थिक जीवन को अगर अच्छे तरीके से बिताना है तो तब मेरे को दीक्षा लेना जरूरी होता है। श्री सरस्वती ठाकुर श्री भक्ति विनोद ठाकुर का उपदेश को लेकर श्री गौरकिशोर दास बाजी महाराज के पास गए दीक्षा प्रार्थना करने के लिए। पहला दिन श्री बाबाजी महाराज ने बताया मैं आपको कृपा कर पाऊंगा कि नहीं, मैं पहले महाप्रभु को पूछ कर आता हूँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके पास आए, आकर पूछने लगे मैंने आपको चरण रज में प्रार्थना कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि भक्ता भुक्त की श्लोक था, भक्त पद रेणुआर भक्त पद जल ভক্তা ভুক্ত অবশেষ এই তিন মহাবল। তো ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজকে পাশ যাকার পুছনে লাগে তো बाबा जी महाराज पहला दिन बताए, मैंने आपको कृपा कर पाऊंगा कि नहीं मैं महाप्रभु को पूछ कर आता हूँ। तो इसी तरीके से 3 दिन तक उन्होंने परेशान हो गए थे भक्त श्रीमंत सरस्वती ठाकुर। लास्ट दिन अंतिम दिन में श्री बाबा जी महाराज ने बताए, आपका जो पंडित्व तो है वो भगवत भक्ति का सामने में तुच्छ है। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया, आपने कपोट चूड़ामणि का सेवा कर रहे इसके लिए आप मेरे को वंचित करना चाहते हो, लेकिन मैं भी किसी भी तरीका से आपको मैं छोड़ना नहीं चाहता। तब इसी तरीका से उसका भक्ति भावना को देखकर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनको अंतिम में भागवती दीक्षा को प्रदान किए थे। श्री गौर किशोरदास बाबाजी महाराज साक्षात वैराग्य मूर्ति, किसी को कभी भी मंत्र दीक्षा वगैरह नहीं देते थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतना अटल भक्ति को देखकर अंतिम में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भागवती दीक्षा प्रदान किए थे। जैसा भागवती दीक्षा का मतलब जिसको कहते हैं कि ब्राह्मण दीक्षा, उसको कहते हैं कि भागवती दीक्षा। तो ये दीक्षा हो जाने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बालेश्वर में आए। जो उड़ीसावासी भक्त है इधर उनको जरूर पता होगा कि बालेश्वर कहाँ पे है। गोपीकांत को तो अच्छे तरीके से पता है, कृपासंद को भी है। तो बालेश्वर, भुवनेश्वर, पुरी, ये सब आध्यात्मिक क्षेत्र है। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर का शुद्ध भक्ति का कारण भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके बाद पहुंच गए थे बालेश्वर जिला में। बालेश्वर में, बालेश्वर एक डिस्ट्रिक्ट है ना बालेश्वर, तो बालेश्वर में एक जगह है जिसका नाम है खेत पाए। खेत पाए उसी समय अपर संप्रदाय में भरे हुए थे। भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन गए कि 13 प्रकार का उपसंपदा है, आउल बाउल कर्ता भजा नेरा ने दल, मतलब अपर संप्रदाय का अर्थ होता है। भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में लिखे है, तिलक नाके गलाय माला ए तो एक कोलीर चले, मतलब जिनका तिलक है कपाल में तिलक है बहुत ही सुंदर, गला में बहुत ही सुंदर तुलसी माला है, लेकिन असत संग नारी संग कहे तारे बारे बार। तिलक भी गला में लगा देते हैं, तुलसी भी है, लेकिन असत संग कर रहे हैं। इसी प्रकार 13 प्रकार का अपर संप्रदाय थे। भक्त विनोद ठाकुर ये अपर संप्रदाय के ऊपर बहुत सारे भजन लिखे हैं। उसमें से एक बहुत ही सुंदर भजन था, दाढ़ी चूड़ा देखिए ओ भाई कोर्चे जीव के वंचना, मतलब दाढ़ी, मतलब जो दाढ़ी होता है ना, दाढ़ी चूड़ा देखिए ओ भाई कोर्चे जीव के वंचना, मतलब जीव को ये लोग वंचना कर रहे हैं। इसी तरीके से भेगधारी साधु बनकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये भेगधारी सन्यासी को कहते हैं कि ये महाप्रभु का कलंक है। इसी प्रकार अपर संप्रदाय भरे हुए थे ये बालेश्वर में। जब बालेश्वर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहुंच गए प्रवचन करने के लिए, बहुत सारे भक्त भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बताया कि आप इधर मत आया करो, ये अपर संप्रदाय इतने खतरनाक है कि आपको कभी भी मार भी सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ग्रंथ में वर्णन किए इसका, मैं थोड़ा पढ़ के सुना देता हूं। प्रभु कहे साधु भिक्षु को वचन मुकुंद सेवन रत कोईल निर्धारा, कहने लगे कि मैं आया हरि गुरु वैष्णव का आशीर्वाद लेकर। इस जगह में आज मैं प्रूव कर दूंगा कि हरि गुरु वैष्णव का आशीर्वाद बड़ा है कि ये अपर संप्रदाय का तत्व बड़ा है। उसका पहले ही इस अपर संप्रदाय के ऊपर भक्त विनोद ठाकुर ने
बहुत सारे भजन लिख दिए थे। आउल बाउल करता भजा नेरा निविड़ दल, बहुत सारे भजन जिसको कहते हैं कि बाउल संगीत। तो ये सब पढ़ने के बाद अप्रसन्नता लोग और क्रोधित हो गए। अरे इतना बाप ने इतने सब लिख दिया हमारा बारे, बेटा आकर और कुछ बोलेंगे ज्यादा, तो हम लोग को टिकना मुश्किल है। लेकिन वो लोगों ने इतने शक्तिशाली थे उस समय, एक गौड़ीय शिक्षा को, गौड़ीय तत्व को स्वीकार करने के लिए बहुत ही कम आदमी मिलता था। इस खीर पाई जिसमें जाकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जीवन का सबसे पहला पंडाल प्रोग्राम किए थे। श्री जगत कुमार स्वामी महाराज एक बार खीरपाई में, जहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जीवन का पहली पंडाल प्रोग्राम हुआ था। ऐसा तो छोटा छोटा प्रवचन बहुत जगह में की थी, नमुना में पहला प्रवचन की, लेकिन सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है ये खीरपाई। तो श्री जगत का महाराज बता रहे थे एक बार कि उन्होंने भी खीरपाई गए थे प्रवचन करने के लिए, क्योंकि आसाम में उड़ीसा में नामट्ट का प्रचार सबसे शक्तिशाली है आज का दिन में। तो महाराज बता रहे थे कि मैंने जब पहली बार खीर पाई गए तो मेरे को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का याद आ गया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आके किस तरीका से इसी जगह पर प्रचार की थी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब पहुँच गए उसी जगह पर, बहुत सारे भक्त ने बताया कि आपको इधर आना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये अपर संपदा इतने शक्तिशाली। भक्ति सिद्ध सरस्वती ठाकुर बताए, मैंने इधर आया हूँ होरी गुरु वैष्णव साधु गुरु वैष्णव का कृपा लेकर। इतना उनका भक्ति में शक्ति था कि कहने लगे कि मैं आज इधर प्रूव कर दूंगा कि होरी गुरु वैष्णव का अगर किसी के साथ कृपा है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है, जितने सारे अपर संप्रदाय आने दो, कोई उसको हरा नहीं सकते कभी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बड़ा पंडल बनाए गौड़ीय समाज में, और बहुत सब अपर संप्रदाय लोग भी आ गए उसी जगह पर। ये क्या बोलना चाहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का तत्व को हम लोग काट देंगे, ये भावना को लेकर। बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन करना चालू की, और 3 घंटा तक उन्होंने उधर प्रवचन किए थे। और 3 घंटा प्रवचन करने के बाद बहुत सारे अपसंप्रदाय का तत्कालीन जितने महंत लोग थे, बंगाल में बोलते हैं कि महंत, गोसाई बोलते हैं, गोसाई गोसाई नहीं तो महंत बोलते हैं, उड़ीसा में भी ये शब्द प्रचलित है गोसाई, ठीक है नहीं? तो ये गोसाई लोग, इतने जो गोसाई है जिसको कहते हैं कि एकदम भक्तिविनोद ठाकुर बताए कि बीवेयर ऑफ गोसाई, मैंने गोसाई से सावधान रहना। प्रभुपाद जी भी प्रभुपाद डायरी में बहुत जगह में लिखा है कि गोसाई से सावधान रहना। कोई कोई बताते हैं कि मैं तो गोसाई परिवार का हूँ, गोसाई मतलब गोसाई एक सरनेम होता है, तो मैं गोसाई परिवार का हूँ, मतलब गोसाई मतलब भगवान के बारे में पूरा जानकारी हो गए। प्रभुपाद जी बहुत जगह में, प्रभुपाद डायरी में प्रभुपाद जी लिखा है बी वेयर ऑफ गोसाई, मतलब गोसाई से सावधान रहना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस खीरपाई में जाकर जब गोसाई संप्रदाय के ऊपर पहला प्रवचन किए थे कि स्मार्ट संप्रदाय, इस अपर संप्रदाय किस तरीके से भगवान का तत्व को काटकर दूसरा भगवान को प्रकटित कर देते। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का 3 घंटा का प्रवचन सुनकर सब लोग एकदम प्रभावित हो गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब प्रवचन करके बाहर आए, तब सब लोग उनको आके दंडवत प्रणाम करना चालू की कि इतना दिन तक हम लोगों ने भूल शिक्षा को प्राप्त करके रखे थे। इसी तरीका से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना प्रचार कार्य को चालू की थी। और एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कलकत्ता में आए प्रवचन करने के लिए, जहाँ पे एक बहुत बड़ा भक्त था जिसका नाम है मुनिंद्र नंदी, उनका घर में आए उन्होंने प्रवचन करने के लिए। और बहुत बड़ा वैष्णव सम्मिलनी, मतलब सब वैष्णव को उन्होंने इकट्ठा की थी। और उसी सम्मिलन में, उतने कॉन्फ्रेंस में जितने सारे वैष्णव लोग आए, या आज का दिन में गौर पूर्णिमा का समय महापुर में होता है विश्व वैष्णव सम्मिलन, वर्ल्ड वैष्णव कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे अलग अलग मठ का, अलग अलग मिशन का सन्यासी लोग आते हैं, आकर मीटिंग वगैरह होते हैं जिसको होता है कि विश्व वैष्णव सम्मेलन। तो उसी सम्मेलन में श्री सरस्वती ठाकुर को विशेष रूप से चीफ गेस्ट बनाकर, मतलब मुख्य अतिथि बनाकर उसी सम्मेलन में बुलाए। सरस्वती ठाकुर 4 दिन लगातार शुद्ध भक्ति का ऊपर बताए, एंड किस तरीका से शुद्ध भक्ति करना है, तो शुद्ध भक्ति का ऊपर बताए। लेकिन उसी जगह में भी बहुत प्रकार सहजिया संप्रदाय आ गए थे उसी जगह में। जब इसी प्रकार सहजिया संप्रदाय को देखा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने ये कार्यक्रम बुलाए थे मुनिंद्र चंद्र नंदी के घर में आकर, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 4 दिन तक कुछ पानी भी नहीं पिए थे। ये मुनिंद्र चंद्र नंदी ने बड़ा दुखी होकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बताया कि आपने मेरा घर में अभी तक कुछ भी नहीं खाए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताए कि अभक्ति विचार में सार्वजनिक जगह में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। तो इसी तरीका से भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना प्रचार कार्य को चालू रखे थे। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक बड़ा भाई थे जिसका नाम है अन्नदा प्रसाद। ये अन्नदा प्रसाद जब जीवन का अंतिम मुहूर्त आ गए, संकट अवस्था में थे, जब जीवन का अंतिम मुहूर्त पहुंच गए थे ये अन्नदा प्रसाद, तब भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आकर उसी जगह में आपका भाई का सामने बैठकर 2 दिन तक हरी कथा परिवेशन की थी। लेकिन भक्त नहीं थे, फिर भी 2 दिन तक हरी कथा परिवेशन की। बाद में ये अप्रकट होने का थोड़ा समय पहले, थोड़ा मुहूर्त पहले, ये अन्नदा प्रसाद अपने छोटा भाई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को चरण पकड़ कर कहने लगे, भले भी आप मेरे से छोटे हो लेकिन मैंने आपका चरण में बहुत अपराध किया, जिसके कारण भगवान मेरे को इसी तरीके से दंड दे रहा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना बड़े भाई को हाथ छुड़ा कर कहने लगे, आप जो भी कार्य किए हो लेकिन जीवन का अंतिम समय में आपने हरि कथा श्रवण किए, तो निश्चित रूप से आपने, जब आपको दुष्ट जन्म मिले, आपने कोई अच्छा परिवार में, कोई वैष्णव परिवार में आपको जन्म मिला। इसी तरीके से बड़ा भाई को उन्होंने सांत्वना बाप को प्रयोग किए थे। इस तरीके से उनको बहुत सारे लीला का वर्णन शास्त्र में है, एक अलग अलग ग्रंथ है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौड़ी मठ का स्थापना हो जाने के बाद अच्छे तरीके से प्रचार कार्य चल रहे हैं गौड़ी मठ गौड़ी मिशन के द्वारा, तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मन में विचार आए कि अभी इस दुनिया में कुछ छोड़ना है, गौर नित्यानंद लीला में मेरे को भाग लेना है। तब उन्होंने अपना जो परम प्रिय सब शिष्य लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शास्त्र में वर्णन किए कि 35 सन्यासी को उनको बुला कर लेकर आए, जीवन का अंतिम मुहूर्त 35 सन्यासी को बुला कर लेकर आके एक ही, उन्होंने एक ही शब्द में प्रवचन की थी कि आपने सिर्फ रूपानुगा भक्ति धारा में रूपो रघुनाथ स्वर्गोस्वामी का आश्रय लेकर गौड़ांग महाप्रभु का प्रचार करना, जिस तरीके से भक्ति विनोद ठाकुर का अप्रकट होने का समय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को निर्देश देकर गए थे कि आप किसी भी तरीका से हो ये मायापुर जो गुप्त वृंदावन, इस गुप्त वृंदावन को रक्षा करना। और माता भगवती देवी भी अप्रकट होने का समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को हाथ पकड़ कर बोलते गए कि मेरा गौरंगों का सेवा अच्छे तरीके से करना। ये माता पिता दोनों का आदेश को लेकर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जीवन का अंतिम दिन तक उन्होंने भगवान का सेवा की थी। और जब उनका अप्रकट समय हो गए सामने, अपना सब प्रिय शिष्य सबको उन्होंने बुलाए और बुलाकर कहने लगे कि आप रूपानुगा धारा में रूप रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ये सबका चरणार्थित होकर गुरु गुरंगों का सेवा करना। और इस भावना से अगर आप सेवा करोगे जीवन में कभी भी आपको कलह नहीं आएगा, सिर्फ गुरु गुरंगों का चरण में आश्रित होकर सेवा कर देना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की श्रील प्रभुपाद की, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव तिथि की जयनिता योग रूपे हरे कृष्ण। आज पुष्पांजलि है 12 बजे, सब लोग पुष्पांजलि में भाग लीजिए। हरे कृष्णा। आज गौर गोविंद महाराज का भी तिरुवाप तिथि है। आज तो ऐसा वैष्णव तिथि अनुसार बहुत ही परम पवित्र दिन है कि आज का दिन में गौर गोविंद स्वामी महाराज मायापुर धाम में अपना अप्रकट लीला का प्रकट किए थे। उसमें बहुत ही सुंदर वर्णन भी है, बहुत सारे भक्तों, मेरा सौभाग्य था कि जिस दिन गौर गोविंद महाराज का अप्रकट तिथि है मायापुर में, मैं उस दिन मायापुर में ही था। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज जो संघ बिल्डिंग है, संघ बिल्डिंग में एक रूम है, रूम नंबर 85 चार माला। तो गौर गोविंद महाराज अपने सब शिष्यों के साथ बैठकर जगन्नाथ लीला बता रहे थे। और जगन्नाथ लीला बताने का समय एक जगन्नाथ अष्टकम एक ग्रंथ रहता है गौर गोविंद महाराज का। आज इसमें आवरेख है जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, ये शब्द को वर्णन करने का समय गौर गोविंद साई महाराज इसी धराधाम से अप्रकट हो गए थे। इसका बहुत सारे लीला का वर्णन है लेकिन समय तो है नहीं तो मैं बताने वाले थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्री गौर गोविंद साई महाराज की गौर प्रेम मंदिर।